Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Giridhare Radha, Giridhare Radhe, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Srila Upad ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Divim Saraswatim Vyam Tato Jayamudhirayet Nasya Praesha Badresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki Srimad Bhagavatam Skanda 9 Adhyaya 18 Shloka Sankhya 49 Yasmin Idam Virachitam Yo mani iva jaladavali nana iva bhati na bhati svapnamaya manarataha yasmin idam virachitam Yasmin idam virachitam Yomeva jaladavali Mumeva jaladavalihi Naneva bhati nabhati Naneva bhati nabhati नाइव भाति ना भाति स्वप्नमाया मनोरथः यस्मिन्निदं विरचितम् योम्याइव जलधावलिः ॐ व्योम्यैव जलधावलिः नानैव भाति नाभाति स्वप्नो माया मनोरथः यस्मिन्निदं विरचितम् शब्दार्थ इस प्रकार है, यस्मिन् जिसमें, इदम् यह पूरा विशाल जगत, विरचितम् उत्पन्न, योम्नि आकाश में, इव सदृश जलदावलिहि बादल, नाना इव मानो विभिन्न प्रकार के भाति प्रकट होता है, न आभाति प्रकट नहीं होता है, स्वप्न माया मोह में स्वप्न की तरह मनः रतः मन रूपी रत। तात्पर्य जो है रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं, जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है, जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तो सारी वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश करती हैं और सारे भेद प्रकट दिखलाई नहीं पड़ते। तात्पर्य, जैसे कि स्वयं भगवान ने गीता भगवद गीता में कहा है, वासुदेव बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम तपस्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेक अनेक जन्म मरण के बाद जो ज्ञानी है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरे शरण में आता है। ऐसे महापुरुष अत्यंत विरल होते हैं। भगवान वासुदेव परब्रह्म हैं। परब्रह्म में सारी वस्तुएं उन्हीं में रहती हैं और उन्हें उन्हीं में से जब कुछ सब कुछ उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। वे हर एक के हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, उन्हीं में सारे वस्तुएं उद्भूत है जन्माद्यस्यतः। किंतु सारी भौतिक वस्तुएं क्षणिक या नाशवान है। स्वप्न माया तथा मनोरथ क्षणिक हैं। इसी प्रकार सृष्टि भी क्षणिक है, लेकिन भगवान वासुदेव जो परब्रह्म है वो शाश्वत है। ओम ज्ञानानंदस्य ज्ञानांजनशलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टमांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सुदीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीशाकान्तांश हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्तरमोऽस्तु सप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज गोपाष्टमी है, इसलिए आप राधा रानी को कृष्ण के रूप में देख रहे हो। गोपाष्टमी के विषय में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जो श्लोक है इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी ययाति के विषय में चर्चा हो रही है। ययाति के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे और भोगना है इस जगत को, मुझे युवावस्था की आवश्यकता है, इसलिए युवावस्था कौन प्रदान करेगा। उनके चारों पुत्र के पास गए तो उनके जो चौथा पुत्र है उसको तो बात कम कर दीजिएगा, फिर ऐसा हो रहा है बात। तो चौथे पुत्र के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे युवावस्था प्रदान करो। पुरु जो उनका चौथा पुत्र है तो उन्होंने कहा मैं प्रदान करूंगा। अस्तित्व में मैं इतना नीच हूं। वैसे तो पिता का जो आज्ञा है उसको तुरंत पालन करना चाहिए, आज्ञा देने से पहले ही पालन करना चाहिए, क्योंकि पिताजी के मन के विचार को जानना पुत्र का कर्तव्य होता है, ये प्रथम श्रेणी का पुत्र होता है। लेकिन मुझे आपकी आज्ञा सुनने का या आपकी बोलने का मौका देना पड़ा मुझे, इसलिए मैं प्रथम श्रेणी का पुत्र नहीं हूँ, द्वितीय श्रेणी का पुत्र हूँ। तब गुरु कहते हैं चार प्रकार के पुत्र होते हैं। एक, पिता का मन को जानते हैं, पिता का मन को जान के ही उनके अनुसार कार्य कर देते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं देते कार्य करो। दूसरा, पिता का आज्ञा सुनने के बाद खुशी खुशी सेवा करते हैं। और तीसरा, पिता का आज्ञा उनके वो चिड़चिड़ाते हुए सेवा करते हैं, क्या बता दिया मुझे, क्या बोल दिया मैंने। और चौथा, ये पिता का आज्ञा सुन के कोई करते नहीं है। तो ये चार प्रकार के पुत्रों में मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं सिर्फ मैं द्वितीय श्रेणी का पुत्र हूं। अपने आप को मतलब नम्रता को व्यक्त करते हुए पूर्व कहते हैं कि नहीं, आप लीजिए। तब ययाति को उन्होंने दे दिया अपने पूरा युवावस्था, और जैसे युवावस्था को दिए, ययाति ने क्या किया, उनकी पत्नी देवयानी के साथ रमण करने लगे। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, क्योंकि पिछले चार श्लोक का तात्पर्य नहीं है। ओ महाराज परीक्षित, द सन पुरु वॉज वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट द ओल्ड एज। आपका वृद्धावस्था है वो मुझे दीजिए, मैं आपको मेरी युवावस्था प्रदान करूंगा। बड़े खुशी से उन्हें प्रदान किया, और ये युवावस्था को ग्रहण करके ययाति ने क्या किया, वो सात जो द्वीप है सप्त द्वीपों के ऊपर उन्होंने राजत्व शुरू किया। वैसे तो नौ द्वीप है, लेकिन दो द्वीप उनके अंडर में नहीं थे, आगे पता लगता है। सात द्वीपों का राजा बने और पूरा भोग करने लगे। उनकी पत्नी दिव्यानी के साथ अलग अलग जगह, अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग झरनों के पास, अलग अलग जगह जैसे वो भ्रमण करने लगे। करते समय तो राजा एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, धर्मनिष्ठा होने के नाते, उनकी पत्नी के साथ वो यज्ञ भी करने लगे। बहुत प्रकार के यज्ञ करने लगे भगवान की संतुष्टि के लिए। जो भगवान हरि हैं, जो सारे देवताओं जिसके अंदर निवास करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ययाति ने क्या किया, यज्ञ करना शुरू किया। वो भोग भी रहे थे और साथ साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेकों अनेकों यज्ञ के कार्य भी कर रहे थे। तो वो भगवान जिनका यज्ञ कर रहे थे, उस भगवान का स्वभाव क्या है, वो भगवत तत्व का निरूपण इस श्लोक में हुआ। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित, ययाति के अंदर दोनों भावना थी। एक तो युवावस्था को प्राप्त करके उनकी पत्नी के साथ भोगने की प्रवृत्ति भी थी, भोग भी रहे थे और साथ साथ में यज्ञ भी कर रहे थे। और किसका यज्ञ कर रहे थे, किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे, हरि को प्रसन्न करने का यज्ञ कर रहे थे। हरि देवताओं का यज्ञ नहीं कर रहे थे, हरि को प्रसन्न करने का यज्ञ कर रहे थे। और वो हरि का स्वभाव क्या है, व्हाट इज दिस पोजिशन ऑफ हरि, उनका तत्व निरूपण इधर इस श्लोक में हुआ है। यानी ययाति इस तत्व को जानते थे जो इस श्लोक में वर्णन किया गया है। वो जानते हैं ये भौतिक जगत जिनको मैं भोग रहा हूं वो कहां से उत्पन्न हुआ है, भगवान से उत्पन्न हुआ है। और साथ साथ में ये भी जानते हैं ये भौतिक जगत का विनाश जब हो जाता है वो कहां जाने वाले, वापस हरि के पास जाने वाला है। तो ये बात का ज्ञान के साथ ये ययाति यज्ञ कर रहे थे। अभी इसके ऊपर आचार्य विचार करते हैं कि ययाति को मालूम था ये बात, क्या मालूम था, ये जो भौतिक जगत है अनित्य है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। लेकिन वो भोग करने की प्रवृत्ति उनके मन से नहीं जा रहा था, तो इसलिए ययाति ने क्या किया, तो वो भोग भी कर रहे थे और साथ साथ में यज्ञ भी कर रहे थे, ये आशा के साथ, ये भोग की प्रवृत्ति मेरे अंदर से कब निकल जाए। तो ये भोग की प्रवृत्ति ऐसा है या भोग करना जो है वो एक गंदगी के बराबर है। लेकिन ये गंदगी कभी कभी हमारे हृदय में पूर्ण गंदगी को निकालने के लिए ये बाहर का थोड़ा गंदगी डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई का किसी का शरीर बहुत गंदा है, बाहर गया तेल वेल लग गया, अगर उसको पानी से नहाएंगे वो गंदगी दूर नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ता है, साबुन नामक कुछ गंदगी है उसको और डालना पड़ता है बाहर से, तो उसके द्वारा क्या होगा, जो शरीर के ऊपर गंदगी है और ये साबुन नामक गंदगी, ये दोनों मिलके एक साथ पानी के साथ पूरा निकल जाएगा। तो ये है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन की आवश्यकता क्यों है, इतना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हृदय में ये जो प्रवृत्ति भोग की प्रवृत्ति है, इस भोग की प्रवृत्ति को निकालना है, वो निकालने के लिए थोड़ा भोग को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे हृदय में जो गंदगी है उसको निकालने के लिए बाहर का साबुन नामक गंदगी को धारण करना पड़ता है। साबुन साफ चीज थोड़ी ना है, वो भी तेल से बना हुआ है, अनेक केमिकल से बना हुआ है। जब आप उसको ग्रहण करते हो तो अंततः साबुन का जो गंदगी है वो और शरीर का गंदगी है दोनों को करना ही है। तो ये इस मार्ग को कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। दो प्रकार का मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग में ययाति को गुणगान किया गया है। वैसे अगर देखा जाए ययाति जो है कोई निंदा कर सकता है ययाति को, कितना किस प्रकार का पिता, देखो वृद्ध हो गया, भजन करना चाहिए शांति से, लेकिन फिर भी अपना पुत्र का युवावस्था को लेकर भोग रहा है। अगर इस प्रकार सोच की ययाति को निंदा करता है तो अपराध कर रहा है। क्यों, ययाति भगवान कृष्ण के भक्त है। ये श्लोक में इसी बात को कहा गया, वो तत्वज्ञ है, वो तत्व जानते हैं, ये भी जानते हैं कि मुझे इस भोग से निवृत्त होना है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भोग कर रहा है या भोग में प्रवेश कर रहा है या विवाह को या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है एक भक्त, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं कब ये छोड़ूंगा। अगर मान लो कोई चीज को ग्रहण कर रहा है, कोई विवाह व्यवस्था गृहस्थ आश्रम को, विवाह करने से पहले ये सोचना चाहिए मैं कब छोड़ूंगा इसको। जैसे साबुन लगाने के पहले हम क्या सोचते हैं, साबुन का जो द्वारा उत्पन्न हुआ जो फेड़ है वो कब निकालूंगा। अगर कोई सोचे साबुन बहुत अच्छा है, चलो मेरा गंदगी भी है साबुन भी है इसके साथ में रहूंगा तो और गंदा। नहाने से पहले जो साबुन लेके जाता है ये इसके लिए नहीं लेके जाता है कि मैं साबुन को अपने शरीर के ऊपर लगा के आऊंगा बाहर। साबुन का जो शरीर के लगा के उसका भी वो भी निकाल दूंगा और जो अंदर जो है वो भी निकाल दूंगा। तो और एक उदाहरण दिया गया, एक है कांटा। कांटा क्या होता है, मान लीजिए एक पैर में कांटा फंस गया है तो आपको दूसरा कांटा लेना पड़ता है। लेके क्या करना होगा, दूसरा कांटा को लेके अपने अंदर जो फंसा हुआ कांटा है उसको निकालना। मान लीजिए कोई युवक है उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति का कांटा घुस गया है तो इसके लिए उनको एक स्त्री नामक कांटे को साथ में लेना पड़ता है। जब उनको उस कांटा को निकालना है तो इससे जब उस निकालने के अंदर बहुत दर्द होता है, लेकिन बाद में क्या करना पड़ता है, दोनों को फेंकना पड़ता है। अगर दोनों को साथ में जेब में रखा तो खतरा। ये है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म में कोई तकलीफ नहीं है, अगर उसको यथारूप उसका उद्देश्य को जानते हुए पालन किया जाते तो तकलीफ। अगर कोई उसको उद्देश्य को जाने बिना उसके अंदर प्रवेश करता है, उसको स्वीकार करता है, तब दुख जो है दिन पर दिन बढ़ते जाता है, दिन पर दिन बढ़ते जाता है। तो ये प्रसंग में, ये ययाति के प्रसंग में ये बहुत स्पष्ट रूप में अभी उल्लेखन किया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर भोग की प्रवृत्ति है और उस भोग की प्रवृत्ति जो है तुरंत नहीं निकलेगा तो उसके लिए क्या करना होगा, और थोड़ा सा भोग को ग्रहण करना पड़ेगा और थोड़ा सा भोग को ग्रहण करके वो दोनों प्रकार का भोग जो है हृदय में जो भोग की प्रवृत्ति है, भोग की वस्तु है, वो दोनों को साथ में एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए किसका सहारा होगा? कृष्ण सहारा लेना होगा। तो इसलिए जो किसी के अंदर भोग की प्रवृत्ति भी है, ऐसा कहा गया है कि आप कृष्ण को ही भजो। भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, अकाम सर्वकामो मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेताम पुरुषम परम। तीव्रता से हमको कृष्ण का भजन करना चाहिए। आपके अंदर भोग की प्रवृत्ति हो या ना हो, या हर प्रकार की भोग की प्रवृत्ति हो, केवल कृष्ण के पास जाइए। ययाति ने पालन किया। ययाति के अंदर वृद्धावस्था हो गया, तो वृद्धावस्था ऐसा चीज है कि अंदर भोग की प्रवृत्ति है लेकिन वो भोग को पूर्ण करने की क्षमता नहीं है, ये और दुखद अवस्था होता है। युवावस्था में मान लो ये भोग की प्रवृत्ति है, भोग की प्रवृत्ति है तो उस भोग की साधन को या भोग का साधन जो शरीर है वो भी सही रहता है और भोग की सामग्री उनको ग्रहण करने की शक्ति भी रहता है, इसलिए उतना दुख अनुभव नहीं होता वो अवस्था में। लेकिन उस युवा अवस्था में अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है तो क्या होता है, शरीर धीरे धीरे से क्षीण होता जाता है और भोग की प्रवृत्ति बढ़ता जाता है, और भोग की प्रवृत्ति बढ़ता है भोग करने का जो क्षमता है वो कम होता जाता है, यानी भोग में, भोग की प्रवृत्ति में और भोग करने की क्षमता में जो फासला है वो दूर होता जाता है। तो वही फासला जो है हमारा दुख का कारण है। इस जगत में दुख को किसको बोलते हैं? मुझे कुछ चाहिए वो नहीं है, उसी को दुख बोलते हैं कि नहीं? तो जैसे वृद्धावस्था को और घनता है वो भोग की प्रवृत्ति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और उस भोग की सामग्रियों को ग्रहण करने की शक्ति कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो फासला जैसे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एंजॉइंग टेंडेंसी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट इंक्रीज, तब फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए आजकल देखते हैं बहुत सारे वृद्ध लोग बहुत परेशान है, वो परेशान है और साथ साथ दूसरों को परेशानी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो क्या दे सकता है, वो परेशानी दे सकता है कि नहीं? मेरे पास जो है वही चीज दे सकता हूं, मेरे पास अगर 100 रुपए तो 100 रुपए दे सकता हूं, मेरे पास जो है वो दूसरों को दे सकता हूं, है कि नहीं? किसी व्यक्ति ने आके मुझे मेरे पास कहा, कहो जी बहुत परेशान कर रहा है, मैंने कहा कि वो वही चीज दे सकते जो उसके पास है। वो खुद परेशान, इससे आपको परेशानी दे रहा है, इससे दूर रहो। अगर वो खुशी होता, वो सुखी होता, वो आनंद में होता तो आपको आनंद देता। तो आजकल हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो युवावस्था में वो भक्ति नहीं किए थे। यहां से उनका उदाहरण है, युवावस्था में भोग की प्रवृत्ति है, भोग करो जैसे वर्णाश्रम धर्म के धर्म के अनुसार और साथ साथ भगवान को भक्ति करो, तो क्या होगा, भोग की प्रवृत्ति कम होगा। जैसे भोग की प्रवृत्ति कम होता जाएगा और वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते तत्व ज्ञान भी प्रकाशित होगा हृदय में। यू कैन नो द फिलॉसफी, भगवत ज्ञान भजन जो है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ये वर्णाश्रम धर्म का जो व्यवस्था इसी के लिए किया गया है। वर्णाश्रम धर्म सरल रूप में बताया जाए एक साबुन के बराबर है। अगर किसी के हृदय में गंदगी नहीं है, वो खाली पानी डालने से धुल जाता है, तो उनको ये साबुन की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर शरीर में बहुत सारा गंदगी है, तो इधर उधर घूम के आए, बहुत सारा कचरा जमा पड़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको साबुन की आवश्यकता है। लेकिन जब साबुन का आवश्यकता है करके वो सोचे साबुन का जो गंदगी साबुन से उत्पन्न हुआ जो फेण है उसको भी लगा के बैठा रहेगा तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये हर भक्त को होना चाहिए, हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए। अंततः हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भौतिक भोग से निकल जाना। लेकिन उसके लिए जिसका ज्यादा गंदगी नहीं है उनको वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा गंदगी है उसके लिए क्या करना होगा, वर्णाश्रम धर्म जो है उसको स्वीकार करते हुए, उसका उद्देश्य को जानते हुए स्वीकार करना होगा।
जैसे कोई पैर किसी का टूट गया है किसी कारणवश, वो सहारे के बिना चल नहीं सकता, एक डंडा है सहारे के बिना चल नहीं सकता, तो वो सहारा उसको लेना पड़ता है। लेकिन जो सहारा जब लेता है उसको क्या विचार करना चाहिए, मैं इस सहारे से चलते चलते ऐसा अभ्यास करूंगा ताकि ये सहारा को मैं छोड़ दूंगा। अगर वो सोचेगा कि अभी सहारा आ गया चलो मैं जीवन भर इसके साथ में रहूंगा, तो क्या होगा, जो पहले जो चलता था पैर वो भी बराबर बंद हो जाएगा। उसी प्रकार ये विवाह का समय हर एक पुरुष के सोचना चाहिए, अभी मैं जीवन भर अकेला भगवान का भजन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे एक सहारा चाहिए, तो सहारे के साथ भगवान का भजन करूंगा। किस उद्देश्य के साथ, धीरे धीरे से मैं ऐसा परिस्थिति में पहुंचू ताकि मैं अकेला भगवान का भजन कर सकूं, क्योंकि जाना तो अकेला ही ना, ये विचार है। चलिए, इधर तत्व ज्ञान का निरूपण हो रहा है। तत्व ज्ञान का निरूपण इसलिए हो रहा है क्योंकि ये याति को मालूम है कि जिस जगत को मैं भोग रहा हूं वो जगत कहां से आया है, कृष्ण से आया, और जिस जगत को मैं भोग रहा हूं वो जगत कहां जाने वाले, वापस कृष्ण के पास जाने वाला है। अभी इतना तत्व ज्ञान के साथ ये याति भगवान वो भौतिक जगत को भोग रहा था और पूर्ण ज्ञान के साथ भौतिक जगत को भोग रहा था। ये फर्स्ट क्लास ग्रह, आइडियल ग्रस्त, आइडियल ग्रस्त होता है, ऐसा नहीं कि वो अपने वैरागीपन ग्रस्त का शास्त्र में दिखाता है, शास्त्र में वैरागीपन दिखाना नहीं चाहिए, वो भोग का जगह है इसलिए भोगना चाहिए, लेकिन किस ज्ञान के साथ, मुझे त्याग कर रहा है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म इतना टेक्निकली डिजाइन किया हुआ है, हर एक व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार किस प्रकार उनको ऐसा कुछ कार्य किया जाए तो धीरे धीरे से वो क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। हर आश्रम की अपने अपने जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ आश्रम का जिम्मेदारी है कि अपने साथ में रहने वाले सब लोगों को जो भोग की व्यवस्था है सब कुछ बराबर करना। वो करते करते धीरे से क्या होगा, भगवान का भजन करते करते वो मुक्त हो जाएगा। जैसे कुंती महारानी कहती है बहुत वो दर्शन में स्यात न पुनर्भव दर्शनम, हे भगवान मेरे जीवन में और दुख दो और दुख दो ताकि मैं आपका बच्चा भजन कर सकता कर सकती हूं। कोई ग्रंथ का हिम्मत है बोलने की, नहीं नहीं, और कुछ थोड़ा सा सुविधा दो भगवान ताकि मैं भगवान का भजन कर सकूं, ये प्रार्थना रहता है। हे भगवान मुझे थोड़ा अच्छा घर दो ताकि मैं अच्छा शांति से बैठ के भजन कर सकूं, मुझे और दुख दो करके प्रार्थना निकलेगी नहीं, क्योंकि ये जो प्रार्थना है वैरागी लोगों के लिए, कुंती महारानी की प्रार्थना, क्योंकि मुझे और कष्ट दे, गिव मी मोर एंड मोर डिफिकल्टीज ताकि मैं आपका शरण और अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता हूं। लेकिन गृहस्थ के लिए क्या प्रार्थना है, जैसे गजेंद्र ने प्रार्थना किया, हे भगवान मैं इतना दुखी हूं, ये दुख से निवृत्त करो कि मैं आपका भजन कर सकता। देखिए दोनों में बिल्कुल टोटल कॉन्ट्रास्ट, कुंती महारानी कहती है भगवान मुझे दुख दो ताकि मैं आपका भजन कर सकती हूं, गजेंद्र क्या कहता है, हे भगवान दुख से निवृत्त करो ताकि मैं आपका भजन कर सकता। तो कुंती महारानी प्रार्थना किसके लिए है, वैरागी के लिए, और गजेंद्र की प्रार्थना किसके लिए है, तो इधर ययाति उस प्रकार की परिस्थिति में है, मुझे युवावस्था दो ताकि मैं भोग सकूं और भगवान का भजन अच्छा कर सकूं। लेकिन ये जो ययाति का प्रसंग है, ये प्रसंग को सुन के कुछ लोग गलत निर्णय ले सकते हैं कि एक बड़ा दुष्ट दार्शनिक प्रकट हुआ तो मर गया अभी, उसने कहा भोग करते जो अपने आप समाधि प्राप्त कर गए, उसमें और ययाति का इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, ययाति ने भोग को समाधि या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया, भगवान का भजन ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का साधन है, भगवत तत्व ज्ञान और भजन ही आत्म साक्षात्कार का साधन है, ये याद ही जानता था, और भोग से निवृत्त होने के लिए यही साधन ही जानता था, भोग को ही आत्म साक्षात्कार का साधन के रूप में यह याद स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये जो तथाकथित दार्शनिक है, नाम मेरा भी पाप है, उसने क्या कहा था? संभोग से समाधि। लेकिन ययाति में, ययाति का इस दृष्टिकोण में उसमें कोई बहुत अंतर है, क्योंकि एक भक्त ने बहुत साल पहले की बात है मेरे साथ बहुत तर्क करने लगा। ने कहा देखिए प्रभु जी, ययाति का प्रसंग में पढ़ा और इसमें और रजनी का फिलास में कोई अंतर नहीं है। तब मैं उनको बहुत समझाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया बात। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आए कि ययाति के मन में जरा सा भी ये शंका नहीं था कि ये जरा सा भी इस प्रकार का विचार नहीं था कि भगवान को प्राप्त करने का साधन भौतिक जगत की भोग है। उसके मन में इस प्रकार की भावना नहीं थी। उसके मन में ये भावना जरूर थी कि मैं भोग से मुक्त नहीं हूं, इससे मुझे भोग करना है और उससे मुक्त होना है। मैं मुक्त नहीं हूं और क्या करना, मुझे मुक्त होना है। उसके लिए क्या है साधन? भगवान का भजन और तत्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए भगवान का भजन, ताकि मैं इस भोग की प्रवृत्ति से निकल जाऊं। इसलिए ये ययाति का इस प्रकार का विचार है और कार्य है इसमें, और वो जो संभोग के समाधि वाला है उसमें बहुत अंतर है। लादर ठीक है, अभी इस श्लोक के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहला बात क्या है? यस्मिन् निदम् विरचितम् में बड़ा ये है, सज्ञों की बात है। गजेंद्र की प्रार्थना भी इन्हीं शब्दों से शुरू होता है। यस्मिन् निदम् यतश्चेदम् येनेदम् यैदम् स्वयम् त्वेस्मात् परस्मात् च परस्तम् प्रपद्ये स्वयंभुवम्। देखिए पूरा श्लोक। यस्मिन् निदम् यतश्चेदम् येनेदम् यैदम् स्वयम् यस्मात् परस्मात् च परस्तम् प्रपद्ये स्वयंभुवम्। मिला श्लोक? हाँ होगा। यस्मिन् निदम् यतश्चेदम्, ठीक है, नहीं मिला तो इसलिए। ये गजेंद्र की प्रार्थना का पहला श्लोक है और ययाति भी यही प्रार्थना कर रहा है। यस्मिन् निदम् विरचितम्, इधर विरचितम है, यस्मिन् निदम् यतश्चेदम्, वो भी दोनों का अर्थ एक ही है। नहीं मिला गजेंद्र की आठवां स्कंद में है। कौन सा स्कंद? आठवां ना, आठवां स्कंद में होगा। तो यस्मिन् निदम् का अर्थ क्या है? यस्मिन् जिनसे, इदम् का अर्थ है भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है? ये कहां से उत्पन्न हुआ है? यस्मिन् जिनसे उत्पन्न हुआ है। कौन है वो? कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। कृष्ण से उत्पन्न हुआ है इसलिए यस्मिन् इदम्, ये जो शब्द, ये जो भौतिक जगत को इदम् कहा गया। पूर्णम अदप पूर्णम इदम्, जब भी इदम् शब्द है ये जानना चाहिए भौतिक जगत। पूर्णम अदह, अदह का अर्थ है भौतिक आध्यात्मिक जगत या भगवान। यानी ये भौतिक जगत कहां से उत्पन्न हुआ है? भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो ययाति को मालूम है कि जिस जगत को मैं भोगने की प्रयास कर रहा हूं या भोग रहा हूं वो कहां से उत्पन्न हुआ है? वो कृष्ण से आया है। तो कृष्ण से आया वो है किसका? कृष्ण का है। तो इसलिए ययाति कहते हैं मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना पापी हूं, कृष्ण का चीज को मैं भोग रहा हूं लेकिन उसके बिना नहीं रह सकता हूं। हे कृष्ण आप बड़े दयालु हो तो मुझे सहन कर रहे हो। इसलिए जो भी भौतिक प्रकृति को जो भोग रहा है, जिसके अंदर भोग की प्रवृत्ति है, उनको एक प्रकार की इस प्रकार भोगने के बाद इस विचार करना चाहिए, हे कृष्ण का लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कितना पाप कर रहा हूं। जैसे भक्तिनोद ठाकुर शरणागति में के पापे क्या है, अमार जीवन सदा पापे रहते, हमार जीवन सदा पाप है। जैसे भक्तिनोद ठाकुर कुछ पाप नहीं किया, लेकिन ये एक शिक्षा है प्रत्येक भक्त को, क्या विचार करना है मैंने क्या क्या पाप किया। लेकिन लोग आजकल क्या करते, बड़ा गर्वित हो जाते, को मैंने ऐसा घर लिया है, हाँ मेरे पास इतना है, मैंने ऐसा गाड़ी लिया है, इससे अहं इससे और दे बिकम मोर पफ्ड अप। लेकिन उल्टा उनको नम्र होना चाहिए, मैं कितना नीच जगह पे हूं, भगवान की चीज को मैं अपना समझ के बैठा हूं। तो ये जो गृहस्थ है जो इस प्रकार विचार करता है वो भौतिक भोग से जल्दी मुक्त हो सकता है। जो ये विचार करता है मैं पापी हूं, आई एम सच ए सिंपल पर्सन, मैं इन सब चीजों के साथ में हूं, मैं इन चीजों को मैं अपना बना के अपना सोच के बैठा हूं, आई एम द मोस्ट सिंपल पर्सन, जो इस प्रकार की मानसिकता के साथ अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भजन करता है, चरणापि सुनी चेना करोड़ी वशिष्ठ नमा नावान दे कितने सजाए। एक भक्त ने मुझे पूछा था, गृहस्थ ने पूछा तो जी हाउ टू बिकम हम्बल, कैसे नम्र हो जाए। तो मैंने यही बात कहा, आप अपनी स्थिति को जानो वही काफी है, जस्ट नो योर पोजिशन देन यू बिकम ऑटोमेटिकली हम्बल। तो उनको समझ में आया, मैंने कहा देखो हर चीज भगवान का है, लेकिन तुम एक घर को अपना समझ के बैठे हो और परिवार को अपना समझ के बैठे हो और भगवान की चीजों को भोग रहे हो और चोरी कर रहे हो भगवान की चीज को। इस प्रकार विचार करोगे तो स्वाभाविक तरीके से नम्रता आती है, तब प्रार्थना स्वाभाविक तरीके से निकलती है, भगवान ये आपका चीजों को मैं अपना समझ के बैठा हूं और उसके बिना रह भी नहीं सकता हूं, मैं इसे कब मुक्त हो जाऊंगा। इस भावना से कोई व्यक्ति जप करता है तो निश्चित रूप से प्रगति होगी, यही आती इसी भावना से कर रहा है। अस्तित्व में इन श्लोकों के बीच में श्लोक की कोई आवश्यकता नहीं था। सुखदेव गोस्वामी खास करके श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि ययाति की मन की जो भावना को व्यक्त कर रहे हैं, वो भोग कर रहा था लेकिन इतना ही नहीं था, वो भोग कैसे कर रहा था, ये तत्व ज्ञान के साथ, ये निश्चित ये भावना के साथ, हे भगवान ये आपका है, ये जगत आपसे उत्पन्न हुआ है लेकिन मैं उसको भोग रहा हूं, मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना पापी हूं, अमार जीवन सदा पापे रतो, ये शरणागति का भजन है। भगवान का शरण, भौतिक भोग के साथ भगवान का शरण, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वाइल एंजॉइंग मैटर हाउ यू कैन टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, भगवदगीता में एक जगह प्रभुपाद प्रपोर्ट में इस बात को लिखते, तीसरे अध्याय में, मुझे वो ध्यान नहीं आया, मैं बाद में बताऊंगा ब्रह्मचारियों को। हाँ, डिवोटी कैन टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा वाइल एंजॉइंग मैटर, बहुत गहरा शब्द है। कैसे, ये भावना के साथ मैं कब से निकल जाऊंगा, वेन आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस, हमार जीवन सदा पाप है तो नहीं पुण्य न लेश, लेश मात्र पुण्य भी नहीं किया। भक्तिनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ है, ऐसे तो महान शुद्ध है, मंजरी है, लेकिन सारे जगत को शिक्षा दे रहे कि जब भोग की सामग्रियों के आजू बाजू में रहते हैं उस समय क्या विचार के साथ रहना चाहिए। अगर इस प्रकार के विचार के साथ रह जाए तो पद्म पत्र विमाम बसा। भगवान क्या कहते हैं, एक कमल पानी में रहने पर भी वो पानी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, सूखा रहता है। तो इस प्रकार की भावना के द्वारा पानी में रहने पर भी वो सूखा रहता है। हो सकता है बहुत सारे भक्त लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार का राजा ये आती, देखो वृद्ध होने के बाद भी वापस पुत्र से युवावस्था लिया, ये भोगी व्यक्ति है। नहीं, याति का गुणगान गया इन श्लोकों में। श्री गोस्वामी परम विरक्त क्या करते हैं, अगले श्लोक में इस बात को कहते हैं, कोई भौतिक इच्छा के बिना ययाति ने भगवान का नारायण का प्रसन्नता किया और भले ही वो अव्यक्त है लेकिन हर जगह होने के नाते उन्हें अच्छी तरह से भजन किया। अगले श्लोक में इसका वर्णन करते हैं, ये करने की वजह से आखिरी श्लोक में इस अध्याय में कहा गया है, पूर्ण तरीके से वो भोग से निवृत्त हो गए, बिकेम टोटली डिटैच फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। तो इसलिए जब इन प्रसंगों को जब सुनते हैं भागवतम में, इनको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो ययाति ने क्या किया, देखो अपने पुत्र का युवावस्था लिया, कितना कामे पुरुष है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है इस प्रकार, सोचता भी है, तो अपराध माना जाता है। तो इधर ययाति का गुणगान किया गया है, यस्मिन् निदम् विरचितम्। विरचितम का अर्थ है कि सृष्टि किया गया है। ययाति जानते हैं कि भगवान से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, उनके द्वारा सृष्टि हुआ है, और साथ साथ ये भी जानते हैं क्या है, व्योम्यैव जलधावली। जलधावली का अर्थ है कि बादल, व्योम्यैव जलधावली, जैसे आकाश में बादल रहते हैं उसी प्रकार ये सारा जगत भगवान के अंदर है। इसके लिए नौवां अध्याय पढ़ना होगा भगवद गीता में, यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र वो महान्। पहले क्या है, यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र वो महान्। नव अध्याय का कौन सा श्लोक भगवद गीता का? यदाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र को महान। जैसे आकाश में वायु रहता है लेकिन वो दोनों का मिक्सचर नहीं होता है, वायु अलग है आकाश अलग है, लेकिन वायु कहाँ है? आकाश के अंदर है। वही वायु के बदले में इधर बादल को उपमा दिया गया है। सारा जगत जो है वो बादल के बराबर है, भगवान जो है वो आकाश के बराबर है। जैसे व्योम कर्त है आकाश में, जिस प्रकार बादल रहता है, लेकिन आकाश में बादल है आप ये नहीं बोल सकते बादल के अंदर आकाश है, लेकिन ऐसा लगता है दोनों एक ही है। आकाश को देखोगे अरे बादल बादल है, नहीं आकाश के अंदर बादल है। उसी प्रकार भगवान जो है ये सारा जगत को अपने उनके अंदर रहते हैं। सृष्टि करने के बाद वो उसको मेंटेन भी करते हैं। आगे ना नहीं भाति ना भाति, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवान भजन करते हुए ज्ञान के साथ ना नहीं भाति ना भाति। तो इस जगत में बहुत सारे वैरायटी दिखाई पड़ रहे हैं, पुरुष है स्त्री है बिल्डिंग है जंगल है, अनेकों अनेकों प्रकार के सुंदर विविधता के दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि भोग तभी होगा जब आप विविधता देखोगे। अगर रोज आपको भले कितना भी सुंदर सब्जी हो या स्वादिष्ट व्यंजन हो, अगर रोज वही खिलाया जाए तो है कि नहीं, जो वैरायटी होगा तभी एंजॉयमेंट है कि नहीं। इसलिए वैरायटी में कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है ना नहीं वो भाती ना नहीं वो करते, अनेकों अनेकों वैरायटी दिखाई पड़ रहा है। कौन सोच रहा है बात याती देख रहा है, लेकिन ना भाती ये वैरायटी सब दिखाई पड़ रहा है ना, अस्तित्व में कोई वैरायटी नहीं है। तब ये समझना चाहिए उसके अंदर कोई भोग की प्रवृत्ति नहीं है। भोग की प्रवृत्ति तभी नष्ट होता है जब आप इस वैरायटी में वैरायटी नहीं है देखना। कोई पुरुष सोचता है कि हाँ वो ये स्त्री बहुत सुंदर है, बाद में कोई स्त्री बहुत सुंदर है, वो बहुत वैरायटी दिखाई पड़ रही है, अंततः क्या है वो? शंकराचार्य क्या कहते हैं, शिपा शंकराचार्य, नारी तनभर नाभि तेषाम दृष्ट्वा माघा मोगा तेषाम एतन मांसवसादि विकारम ना नैव भाति। मनसि विचिन्तय वारं वारं, इसको बार बार चिंतन करो। क्या है वो? एक ही चीज है लेकिन अलग अलग पैकेट में, लेकिन पैकेट अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है क्या वो? वन थिंग। पैकेट में बहुत वैरायटी है। आपको कोई मल है उसको चमकीला एक पैकेट में रखा और एक पैकेट में रखा, कोई और सुंदर पैकेट में रखा, पैकेट में आपको दिया जाए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है इसके अंदर? ना भाती, वो एक ही चीज है, इट्स ओनली वन थिंग, देयर इज नो वैरायटी। तो ये तत्व ज्ञान कहा जाता है। इसलिए याति ने ये चीज को देखा, उन्होंने चाहे मैं देवयानी के साथ कोई नदी के बाजू में भोग करूं या महल में करूं क्या जंगल में करूं, कहीं भी जाऊं अंततः क्या है? ना भाती, कोई वैरायटी नहीं, एक ही चीज। चाहे वो कुत्ता करता है बिल्ली करता है या हम करते हैं, अंततः क्या है? वो एक ही चीज है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है जब कोई भोग करता है या भोग संकल्प को सोचता है कि एकदम स्पेशल है, ये स्पेशल मतलब वैरायटी, बहुत सारे चीजें हैं लेकिन मेरे पास जो है वो स्पेशल है, लेकिन नथिंग सो स्पेशल। बड़ा विचित्र जगत है। हर एक की सोचता है जो मेरे पास जो है एकदम स्पेशल है, मैं एक स्पेशल हूं, लेकिन ना नहीं वह भाति दिखाई पड़ता है, ना नहीं वह भाति ना भाति, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। बहुत सारे भले वैरायटी दिखाई पड़े इसमें लेकिन है एक, ना नहीं वह भाति ना भाति। सुखदेव गोस्वामी ययाति के जो मन में तत्व का विचार हो वो कैसे ना भाती है स्वप्न माया मनोरथ, स्वप्न माया मनोरथ, बहुत सुंदर शब्द है। जैसे स्वप्न में बहुत वैरायटी दिखाई पड़ता है, स्वप्न माया मनोरथ, ये स्वप्न माया है, मनोरथ ये जो मनोरथ है, मनोरथ का अर्थ क्या है? जैसे एक मन को रथ के रूप में तुलना करेंगे और मन आपको बहुत वैरायटी दिखाई पड़ता है, नहीं इधर जाओ इधर जाओ, ये बहुत अच्छा है, नहीं ये ठीक नहीं है, वो अच्छा है, ओ ये तो बहुत सुंदर है, ये सब मनोरथ है। लेकिन ये सब मनोरथ कैसा है? स्वप्न माया। आप स्वप्न बहुत सारे बिल्डिंग देखते हो, बहुत सारे चीजें देखते हो, लेकिन उठ के देखोगे जहां से उधर है। तो ये याद ये जानते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं अस्तित्व में क्या है, वो स्वप्न माया मनोरथा, मेरा मनोरथ जो है वो स्वप्न के बराबर है। देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट, इट इज द सेम ओल्ड थिंग, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन सोचता है बहुत स्पेशल। इसलिए खास करके जो भोग करने वाला है, भले ही वो भोग करे क्योंकि उनको मालूम इसके बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन वो भोग की सामग्री के पास जाता है या भोग के विषय के पास जाता है, उनको न प्रावृषेत प्रेम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम, ये भावना के साथ रहना चाहिए। बड़े उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष का विवाह होता है या होने वाला है, अगर वो पुरुष या वो लड़का बड़ा उत्साही है, मतलब वो गया काम से, उसको उदासीन होना चाहिए, क्या हो रहा है मेरे जीवन के साथ, क्या करे बताओ। इसलिए ट्रेडिशनली अगर देखा जाए विवाह के समय स्त्रियां वो सब उत्साह में रहते हैं, उनके लिए फेस्टिवल है, लेकिन इसको उदासीन होना चाहिए, इसको क्या हो रहा है पता नहीं, बाकी चीज ठीक हो रहा है होने दो, बाकी देखा जाएगा। ऐसी भावना के साथ रहना चाहिए। अगर वो बड़े खुशी के साथ बोलता है प्रभु जी मेरा शादी हो रहा है, तो गया काम। न प्रावृष्यत प्रियम प्राप्तिया, प्रिय वस्तु है लेकिन उसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है, उसको मालूम होना चाहिए कि अभी जो जीवन चल रहा है उसके बाद भी ऐसे ही होने वाला है, कोई नया चीज नहीं है, इट्स नथिंग सो बिग इन इट। तो वैसे उदासीन व्यक्ति को ही वर माना गया है, जो उत्साह के साथ कूदने वाला होता है उसको बंदर माना गया है, इसे मंकी। तो ये तत्व विचार है। तो ये आती उन्होंने भौतिक जगत को भोग भी रहा था, लेकिन उनके अंदर वो भोग करने की जो उत्साह था उमंग था वो नहीं था, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है। वो करते करते उन्होंने भगवान का भजन किया, इसलिए वो मुक्त हो गए। इसलिए स्वप्न माया मनोरथा, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ययाति का जीवन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होने वाला है अगला स्कंद में। तो अगला स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का वर्णन होने वाला है, वो उस इन लीलाओं को आस्वादन तभी कर सकता है व्यक्ति जब बिल्कुल रंच मात्री भोग भौतिक भोग करने की प्रवृत्ति ना हो, तब तक वो भगवान की लीलाओं को आस्वादन नहीं कर सकता, दसवां स्कंद में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आखिरी धुलाई हो रहा है हमारी चेतना का, नवां स्कंद मतलब क्या है? द लास्ट क्लीनिंग। वो लास्ट क्लीनिंग किसके द्वारा हो रहा है? अगर कोई सोचे कि मैं तो बेबी आया, मैं भी तो मेरे तो बहुत सारे भोग की प्रवृत्ति है, देखो यही आती है को उनके अंदर इतना भोग की प्रवृत्ति होने पर भी भगवान का भजन किया और किस तरह की किस भावना से किया, वो भी क्वालिफाइड हो गए दसवां स्कंद में प्रवेश करने के लिए, यानी भगवान लीलाओं को श्रवण करने के लिए। इसलिए चाहे आपके पास विरक्ति हो या ना हो, काम हा सर्व काम हुआ मोक्ष काम हो उदार दिही, जिसके पास उदार दिही है उसके महादि हैं, वो क्या करता है? इजेताम पुरुषम परम, ये आदि का उदाहरण है। वैसे पूर्वा का अनेकों अनेकों नवा स्कंद जो है ये कुछ विचित्र विचित्र लीलाओं से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि टेंथ कैंटो का प्रिपरेशन हो रहा है। आपको थोड़ा गोपाश के बारे में चर्चा करते हैं। इसे सर श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताऊं लेकिन नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त बता दूंगा। श्रीनिवास आचार्य गोपाष्टमी इस प्रकार है, गोपाष्टमी में बहुत सारे गोचरण लीला वगैरह सब है, बहुत सारे वर्णन है। ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, सबसे ज्यादा बड़ा उत्सव यह जन्माष्टमी मथुरा में होता है, राष्टमी बरसाना में होता है, नंदगांव में गोपाष्टमी होता है। गोपाष्टमी कहाँ लीला भगवान ने कहाँ किया, नंदगांव में किया। ऐसे कृष्ण 3 साल के हुए तब से एकदम बिल्कुल पीछे पड़ गए थे नंद महाराज यशोदा में के, उन्हें कि बस अभी मुझे गायों को चराने, मैं कह हम किसी से कम नहीं है, आप गायों को चराने लेके जाते हम हमको बछड़ा दे देते हो और बछड़े को धीरे धीरे घुमाना पड़ता है हमको, हम भी लेके जाएंगे, हम भी जंगल में जाएंगे। लेकिन यशोदा मैं तो बिल्कुल मना कर, चुप बैठो। जैसे कृष्ण अभी क्वालिफाइड हो गए, एकदम नाउ क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड नहीं था फिर भी रो रहे, तो नंद महाराज यशोदा मैं को क्या तो करते, यशोदा मैं तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। तो कृष्ण बार बार रोज रो रहे थे, रोज बहुत ये कर रहे थे। तब बलराम जी यशोदा मैं के पास गए, माँ यशोदा मैं आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगा कृष्ण को। तो यशोदा सोचिए कृष्ण को बुलाई, मैंने कहा कल से गायों को चराने लेके जा सकते हो तुम्हारे सारे मित्रों के साथ, क्यों भेज रहे मालूम है, बलराम है साथ में, बलराम का बिल्कुल उनका बात सुनना, अगर जरा सा भी कंप्लेंट आ गया तो वापस बंद। तो इससे हाँ 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 नो प्रॉब्लम, बलराम मेरे भाई भाई उनको तो जाना था जंगल में, क्योंकि जंगल में बहुत सारे वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, सबको हर बच्चा को रहता है, मैं भी थोड़ा साहस करके आओ बाहर। ऐसे कृष्ण इस प्रकार का, तो लेकिन एक कंडीशन नंद महाराज को कहा, इस समय देखो जब जंगल में तो बहुत कांटे होते हैं, बहुत सारे पत्थर है, तो तुम्हारा जो चरण है बहुत कोमल है, कष्ट हो सकता है, तो जूता पहन के जाना होगा। तो कृष्ण कहा हाँ मैं पहनूंगा जूता, लेकिन एक कंडीशन पर, मैं जितने भी गायों को लेके जाऊंगा सबको जूता होना चाहिए। और नंद महाराज को 9 लाख गाय है, कितने जूते चाहिए ब्रो जी, 1 लाख गाय तो 18 36 36 लाख जूते चाहिए वो कहां से लेके आएंगे नंद महाराज नहीं किसी बोला नहीं नहीं वो बहुत चल रहा था। और जैसे गायन को मालूम पड़ा, कृष्ण अगले दिन नंगे पैर उनके साथ चलने वाले, सारे गए अपना रस्सी को तोड़ दिए और पूरा एक दिन रात की पहले एक रात पहले की बात, यानी कल की बात है, कल रात की बात है, सारे गांव एकदम सारे जंगल में गए और जितने भी पत्ते थे कंकड़ थे सबको उन्होंने अपनी जो खुर के द्वारा तोड़ तोड़ के धूल बना दिया। अभी का जो व्रज धूल है उसी के कारण है, व्रज में धूल नहीं था, पत्थर थे, जंगल में पत्थर वगैरह होते, धूल थोड़ी होता है। तो ये गायों के वजह से इस प्रकार धूल बना ताकि उनके अंदर ऐसा था, अगर हमारे साथ कृष्ण आएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको कुछ। तो इसलिए कृष्ण को जरा सा भी दुख नहीं होना, कृष्ण को हमेशा सुख पहुंचाना, इस प्रकार का विचार जो है भक्ति कहा जाता है। इसलिए गोपियां भी कहते हैं आप चरण को हमारे सरों के ऊपर रखिए, क्यों, क्योंकि आपके चरण इतने कोमल हैं। तो भगवान के चरणों के ऊपर आज ध्यान करने का दिन है, और अगले दिन भगवान ने क्या किया, गायों को आगे आगे रखे हुए, पीछे चले कृष्ण और बलराम, और जैसे ये वो प्रवेश कर रहे थे अंदर, तो कृष्ण बलराम जी गुणगान करने लगे। भागवत में बहुत सुंदर 4 श्लोक है, 4 श्लोकों में बलराम जी गुणगान करते हैं, वो कहते हैं बलराम देखो ये वृक्ष जो है झुक रहे हैं आपके चरण को स्पर्श करने के लिए, ये जो मधुमक्खियां आ रहे हैं ये बड़े बड़े ऋषि थे, वो आपकी गुणगान कर रहे हैं। असल में वो सारे जो है वो कृष्ण को ही हो रहा था, लेकिन कृष्ण अपना ही गुणगान बलराम को इंगित करते हुए करते हैं। ऐसा करते करते वो बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन जल्दी खाने का आदत है रोज, बहुत दूर पहुंच गए और जो था वो पहले से खा लिया और भूख लगने लगा। तो ऐसी लीलाएं कृष्ण अनेकों ने की है। कुछ लोग ऐसा कहना है कि आज ही भगवान श्री कृष्ण ने साल वन में बलराम जी ने क्या किया, रेणुकासुर को वध किया, तो ये पहला असुर था धेनु का असुर, बलराम ने वध किया गोपाश्मी या गोप लोगों को लेके जाने के लिए। तो ये गोपाश्मी है, गोपाश्मी दिन गायों की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण जब गायों को लेके जा रहे थे उससे पहले सब गायों की पूजा की, उन्होंने सबको सजाया, सब गायों को लेके गए। तो आज गोपाष्टमी के दिन सही भक्तों को गाय की पूजा करना चाहिए, गो पूजा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो मैं बता नहीं सकता हूँ तो गाय तो है ही नहीं आपके पास, तो गाड़ी है, बैल, बैलगाड़ी तो है नहीं, कार है, लेकिन कम से कम गाय का स्मरण करना चाहिए। ओम सुरभ्यै नमः, ओम गाव्यै नमः, ऐसे मंत्रों के द्वारा गाय की उपासना किया जा सकता है। सुरभ्यै नमः, ओम गाव्यै नमः, ऐसा उच्चारण कर सकते हैं और गौ माता का स्मरण कर सकते हैं, उनकी दिव्यता को आप स्मरण कर सकते हैं। कम से कम गोमूत्र ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे चीजों की बात कर सकते। जो आज श्रीनिवास आचार्य का भी तिरुभाव दिवस है, श्रीनिवास आचार्य का बहुत लंबा, बहुत अनेकों अनेक प्रसंग है, सार रूप में है। श्रीनिवास आचार्य जो है वो प्रकट होने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए, और वो सपने सनातन गोस्वामी ने देखा, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के ऐसा भुजाओं के ऊपर हाथ रखे और उनका आश्रम को पोछते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं जब अप्रकट हो जाऊंगा तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य जो मेरे ही प्रेम का स्वरूप है वो आने वाले हैं। रूप गोस्वामी जो स्वप्न में आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो इतना कष्ट करके तुमने ग्रंथों को रचना किया, उन ग्रंथों को सारे जगत में प्रचार करने वाला श्रीनिवास आचार्य आने वाले। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन स्वप्न में आए, आए और ने कहा कि कृष्ण प्रेम क्या होता है, सारे जगत को दर्शाने वाला मेरा ही स्वरूप समझो, श्रीनिवास आचार्य आने वाले। इस प्रकार ये श्रीनिवास आचार्य की महिमा। आगे श्रीनिवास आचार्य के विषय में चैतन्यदास आचार्य, चैतन्य आचार्य दास, चैतन्य दास आचार्य इनके घर में प्रकट हुए, और बाद में श्रीनिवास आचार्य वृंदावन जाके भले वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, वो शिक्षा ग्रहण के जीव गोस्वामी के अंदर में, जिसे तीन कौन है, श्रीनिवास आचार्य, श्यामल पंडित, नरोत्तमदास ठाकुर, ये तीनों को जीव गोस्वामी पाद ने ग्रंथों को प्रदान किया, सारे आचार्य ग्रंथ ने कहा कि आप जाओ और बंगाल उड़ीसा में प्रचार करो। श्रीनिवास आचार्य को, श्रीनिवास आचार्य बंगाल में बहुत उन्होंने प्रचार किया, वैसे उनके बहुत सारे लीलाएं हैं, लेकिन भी इसको इतना लंबा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 9:25 शाम करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय।